पृष्ठ संख्या 531, रोजगार हेतु योजनाएं, जवाहर रोजगार योजना एवं नेहरू रोजगार योजना, न्यू स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जवाहर रोजगार योजना एंड नेहरू रोजगार योजना। युवा वर्ग आर्थिक समस्याओं का सर्वाधिक समुदाय वर्ग है, जो बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी से पीड़ित है। सरकार निस्संदेह प्रत्येक को बेरोजगार की गारंटी नहीं दे सकती है, जैसा काम के अधिकार में निहित है। तदापि इस बेरोजगार युवा की बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। हरियाणा सर्वप्रथम राज्य है जिसने मैट्रिक बेरोजगारों के लिए 75 रुपये मासिक देना तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगारों के लिए 100 रुपये प्रतिमास बेकारी भत्ते की योजना आरंभ की है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। कुछ एक राज्य युवाओं का साक्षात्कार में जाने के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देते हैं, परंतु ऐसी सुविधा रोजगार का स्थान नहीं ले सकते। सरकार की अधिकतम रोजगार अवसर उत्पन्न करने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अर्वाचीन योजनाएं एवं प्रोग्राम हैं। जवाहर रोजगार योजना। कांग्रेस सरकार ने 1989-90 में गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवार के कम एक सदस्य को उसके घर के निकट वर्ष में 50 से 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी हेतु ग्राम पंचायतों में 2625 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को विचारित करते हुए एक महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी प्रोग्राम आरंभ किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का विचार था कि इस योजना का लाभ ग्रामीण भारत के सभी 440 लाख परिवारों जो गरीबी रेखा से नीचे हैं को होगा, तथा सभी वर्तमान ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों यथा इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्रोग्राम एवं समेकित ग्रामीण विकास प्रोग्राम स्वयंमेव जवाहर रोजगार योजना में मिला दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के अधीन 3000 से 4000 तक जनसंख्या वाली पंचायत को 80,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस स्कीम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि 30% कार्य स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए थे। इसमें घुमक्कड़ जनजातियों को रोजगार देने हेतु समेकित प्रोग्रामों को सम्मिलित किया जाना था। पंचायतों के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित करने के पीछे विचार यही था कि इससे लाभार्थियों को सीधा एवं प्रत्यक्ष लाभ पहुँचेगा तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इससे प्रशासन पर भी व्यय कम होगा। केंद्र 100% सहायता देगा। राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के आकार में अनुपात में सहायता प्राप्त होगी, परंतु इस योजना में कुछ दोष हैं। 2665 करोड़ रुपए की व्यवस्था नया परिव्यय नहीं है। पृष्ठ संख्या 532। 1711 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम जो योजना में मिला दी गई है से अंतरित कर दिए गए हैं। इसमें केवल 389 करोड़ रुपए ही वास्तविक नई परिव्यय है। कुछ परिव्यय में 2100 करोड़ रुपए अथवा 80% केंद्र देगा, शेष राज्य वहन करेंगे, परंतु देखना यह है कि केंद्र एवं राज्य इस अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध कैसे करते हैं। योजना के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायतों को, जिसमें 4000 जनसंख्या है, 1,00,000 रुपए रोजगार देने के लिए दिए जाने हैं। यदि इन देहातों में 40% व्यक्ति गरीबी रेखा जो राष्ट्रीय औसत है से नीचे हैं, तो 5,00,000 सदस्यों वाले कम से कम 320 परिवारों को सहायता की आवश्यकता होगी। 1,00,000 रुपए इन परिवारों को वितरित करने से प्रत्येक परिवार को 1,250 रुपये अथवा प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, जो निर्धनता दूर करने के उद्देश्य से हास्यास्पद राशि है। यह गणना भी अधिक आशावादी है कि आवंटित राशि का पर्याप्त भाग प्रशासकीय संरचना की व्यवस्था एवं परियोजना का प्रबंध करने पर व्यय हो जाएगा। इसके कारण वास्तविक धनराशि प्रोग्राम हेतु कम हो जाएगा। पुनः यह शेष राशि स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों की जेबों में दी जाएगी अथवा अपात्र वर्गों को दे दी जाएगी, जैसा कि समेकित ग्रामीण विकास परियोजना का अनुभव बतलाता है। अंतिम पंचायतें जो राजनीतिक निकाय हैं एवं जिन पर स्थानीय भूमिपतियों का प्रभुत्व है तथा जिसका प्रशासन स्थानीय अधिकारियों के हाथों में है, समता एवं न्याय करने की स्थिति में नहीं है। स्थानीय अभिजन एवं अधिकारी मिलकर योजना के अधीन लाभ को हड़प ले जाते हैं, जिससे वास्तविक पात्र व्यक्ति जो समाज के निम्नतर वर्ग में हैं को कुछ भी यथेष्ट नहीं मिल पाता। इस योजना को वास्तविक रूप देने से ही पता लग जाएगा कि इसका लाभ निर्धन ग्रामीण युवकों को कितना हुआ है। नेहरू रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के पूरक रूप में ही नेहरू रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1989 में नगरीय निर्धनों, विशेषतया नगरीय युवाओं को विभिन्न रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु आरंभ की गई थी। इस योजना के 3 प्रमुख घटक थे। रोमन का नंबर 1, लघु उद्योग लगाने एवं प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक सुविधा प्रदान करने हेतु योजना। रोमन का नंबर 2, सार्वजनिक परिसंपत्ति निर्माण हेतु मजदूरी रोजगार हेतु स्कीम। रोमन का नंबर 3, आवास एवं आश्रम उन्नयन द्वारा रोजगार की परियोजना। इस योजना हेतु कुल परिव्यय 650 करोड़ रुपए है, जिसमें से 432 करोड़ रुपए संस्थागत वित्त है। सब्सिडी तत्व 218 करोड़ रुपए है, जिनमें से 150 करोड़ केंद्र, राज्य, संघ प्रदेशों द्वारा तथा 607 करोड़ रुपए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा व्यवस्था की जाती है। लघु उद्योग स्कीमों के लिए सब्सिडी भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है, जबकि मजदूरी रोजगार एवं आवास तथा आश्रय उन्नयन स्कीमों के लिए यह अनुपात क्रमशः 80:20 होगा। राज्यों, संघ प्रदेशों को राशि का आवंटन जनसंख्या एवं नगरीय निर्धनता के आधार पर किया जाएगा। संघ, राज्य, प्रदेश आवंटित राशि को स्थानीय निकायों, क्रियान्वयन अभिकरणों को विभिन्न जिलों में नगरीय जनसंख्या के आधार पर वितरित करेंगे। पृष्ठ संख्या 533। जिस प्रकार जवाहर रोजगार योजना में पंचायतों की मुख्य भूमिका होगी, उसी प्रकार नेहरू रोजगार योजना में नगर पालिकाओं की प्रमुख भूमिका होगी। वे रोजगार अभिर्मुखी क्रियाओं का चयन, लाभार्थियों की पहचान, आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएं, व्यवस्था, कच्चा माल की आपूर्ति में सहायक, बैंकों को ऋण भुगतान में मोहल्ला समितियों द्वारा सहायता, तकनीकी एजेंसियों के साथ संपर्क आदि का कार्य करेंगी। योजना द्वारा लगभग 10 लाख व्यक्तियों को 5 वर्षों में प्रत्यक्ष रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है, जिसमें नए स्थापित उद्योग, सेवा केंद्रों, सार्वजनिक निर्माण प्रोग्रामों, प्रशिक्षित एवं आश्रय उन्नयन कार्यों के अवसर सम्मिलित हैं। योजना के उद्देश्य सराहनीय हैं, परंतु इनमें कुछ कमियां हैं। स्थानीय निकाय इन योजना अधीन प्रदत्त दायित्वों को पूरा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान नागरिक दायित्वों यथा स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्थानीय यातायात सेवा, ऊर्जा आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि को पूरा नहीं कर पा रही हैं। उनसे यह आशा करना है कि वे अतिरिक्त दायित्वों जिनको पूरा करने हैं तो उच्च प्रबंध कौशल की आवश्यकता है को पूरा कर लेंगी। अवास्तविक एवं अकाल्पनिक है, कदाचित प्रमुख नगर निगम इस कार्य को कर सके, शेष नगर पालिकाओं से आशा करना व्यर्थ है। नगर पालिका स्वयं अपने कर ही वसूल नहीं कर पाती, उसने यह आशा कैसे की जा सकती है कि बैंकों को ऋण भुगतान में सहायता देगी। राज्य योजना हेतु राशि का प्रबंध कैसे करेंगे यह भी कठिन है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को भी उद्योग लगाने के लिए स्वयं कुछ कार्य पूंजी लगानी होगी, जिसका प्रबंध करना उनके लिए कठिन होगा। जिला नगरीय विकास एजेंसी को स्वायत्त विकास के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव भी संस्थागत एवं वित्तीय बिंदुओं को जीवनक्षम प्रतीत नहीं होता। यह कार्य वर्तमान जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को दिया जा सकता है, जिसके पास आवश्यक कौशल अनुभव उपलब्ध हैं और ग्रामीण नगरीय विभाजन भी उत्पन्न नहीं होगा। योजना की सफलता इसके क्रियान्वयन से संबंधित संस्थाओं की शक्ति पर निर्भर करेगी। आशा की जा सकती है कि नेहरू रोजगार योजना नगरीय युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी निर्धनता दूर हो सकेगी। अन्य रोजगार प्रदाय प्रस्ताव, अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रपोजल्स। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1994 से 2005 तक 3 मिलियन अतिरिक्त कार्य उत्पन्न करने हेतु एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की थी। 1988-89 में अनुमान लगाया गया था कि कुल मैट्रिक पास बेरोजगारों की संख्या 5 मिलियन होगी, जिनमें 1.5 मिलियन बेरोजगार स्नातक थे। कार्य योजना में 2.5 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां गैर स्नातकों एवं 5 लाख स्नातकों के लिए सरकारी सेक्टर से बाहर उत्पन्न करने का प्रस्ताव था। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं पॉलिटेक्निकों में 10,000 विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान वार्षिक उत्पन्न किए जाने थे। यह इन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में 16,500 की वार्षिक वृद्धि के अतिरिक्त था। पृष्ठ संख्या 534। यह 10,000 अतिरिक्त स्थान 120 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक अधिक पारी आरंभ करने उत्पन्न किए जाएंगे। इनमें 4 करोड़ रुपए का आपूर्ति व्यय होगा। देश में 903 सरकारी एवं 1,167 गैर सरकारी ITIS हैं, जिसमें कुल सीट लगभग 3.5 लाख हैं। देश के निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भी एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें निजी सेक्टर के उद्यम की सुविधा प्रदान करना, सार्वजनिक सेक्टर के माध्यम से स्वरोजगार अवसर तथा वर्तमान स्कीमों के अंतर्गत स्वरोजगार अवसरों का विस्तार सम्मिलित था। उद्यम सुविधाकरण में वित्त व्यवस्था, विभिन्न निर्देशों की व्यवस्था तथा लागू सेंस आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। सार्वजनिक सेक्टर शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ विक्रेता ठेकों एवं सेवा एजेंसियों को आरक्षित करेगा। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय किए बिना तुरंत रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, यथा बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों का वर्दियां बनाने हेतु अधिक प्रयोग, हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए जूतों का प्रयोग, खनिज पदार्थ के स्थान पर बेंत से बनाई गई टोकरियों का प्रयोग, रेलों एवं अन्य एजेंसियों में कार्यों को काम को अधिकार प्रोग्राम में समन्वित किया जाएगा, कारखानों में काम के घंटों को कम करके शिफ्टों में बढ़ाया जाएगा, उद्यमियों को अधिक भ्रम एवं कम पूंजी प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। भारत में निर्धनता ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, हमारे नगरों में भी निर्धनता के घोर चित्र देखे जा सकते हैं। बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता जैसे नगरों में इसकी इतनी अधिक जनता गंदी बस्तियों, फुटपाथों एवं लकड़ी के अस्थायी ढांचों में रहती है कि इन महानगरों का एक तिहाई भाग गंदी बस्तियों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जहां नगरीय निर्धन रहते हैं, अनुमान है कि हमारी जनसंख्या का आधा भाग गरीबी रेखा से नीचे रहता है। गरीबी रेखा से अर्थ है जहां व्यक्ति को केवल जीवित रहने भर हेतु भोजन उपलब्ध है। योजना आयोग द्वारा 1977 में नियुक्त एक कार्यदल ने गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 कैलोरी तथा नगरों में 2100 कैलोरी वाली प्रति व्यक्ति की दैनिक खुराक पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का मध्य बिंदु बतलाया है। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात ही देश में 1951 में नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो गई। हमारा प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना था, ताकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होकर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। यह विचारा गया कि विकास हो जाने से इसका लाभ समाज के सभी वर्गों, निर्धनों को भी होगा, परंतु विकास की धीमी गति के प्रभाव से निर्धनता के भार में कमी नहीं आई। अतएव नीति निर्माताओं, समाज वैज्ञानिकों एवं अन्य विचारकों ने यह विचार करना प्रारंभ किया कि विकास की सामान्य प्रक्रिया पर निर्धनता दूर करने हेतु निर्भर नहीं रहा जा सकता तथा हमें निर्धनता पर सीधा आक्रमण करना होगा। गरीबी हटाओ के नारे के पीछे भी यही विचार छिपा हुआ था। तदनुसार निर्धनता समाप्ति हेतु अनेक प्रोग्रामों यथा समेकित ग्रामीण विकास प्रोग्राम IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम NREP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना RLEGS एवं स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण TRISEM को आरंभ किया गया। निर्धनता उन्मूलन के सभी पूर्व प्रोग्रामों यथा सूखा राहत क्षेत्र प्रोग्राम DPAD, सामुदायिक विकास प्रोग्राम CDP, लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA एवं सीमांत कृषक एवं खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी MFA CDA को IRD में मिला दिया गया। सभी अवस्थित ग्रामीण मजदूरी रोजगार प्रोग्राम यथा इंदिरा आवास योजना RLEGP, NRDP एवं IRD को 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। संख्या 535। परंतु ये प्रोग्राम कुछ दोषों के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। इन प्रोग्रामों के आरंभ एवं नियोजित करने में केंद्रीय सरकार का प्रभुत्व रहा है, जैसे केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रणाली में परिलक्षित होता है। परिणाम स्वरूप इससे स्थानीय स्तर पर प्रोग्राम क्रियान्वयन की नमनीयता एवं स्वतंत्रता को आघात पहुंचा। नियोजन में रिक्तताओं को एक ऐसी प्रशासकीय प्रणाली द्वारा प्रतिबलित किया जाता है जिसे स्वयं को नई चुनौतियों का प्रभावी एवं समुचित तौर पर समाधान करने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। उत्तरदायित्व छितरा हुआ है। योजना आयोग एवं राज्य स्तर पर कोई ऐसा अकेला मंत्रालय अथवा एजेंसी नहीं है जो सभी स्कीमों को समेकित करके एक समन्वित प्रोग्राम तैयार करे। निर्धनता विरोधी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में नौकरशाही प्रशासकीय तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता के साथ लोगों की सहभागी संस्थाओं का धीरे धीरे लोप हो गया है। राज्य सरकार भूमि सुधार लागू करने तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हुई है। निर्धनता विरोधी प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम बनकर रह गया है, जिसमें लोगों, स्वयंसेवी संगठनों अथवा अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को भागीदार नहीं बनाया गया। बिचौलियों ने लाभभोक्ताओं का शोषण किया, राहत राशि को स्वयं हड़प कर गए, जिससे इसका लाभ संबंधित निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सका। भ्रष्टाचार का प्रकोप बना रहा, विभिन्न व्यवसायों तथा आय प्रदाय स्कीमों की प्रशिक्षण कार्य अवसरों का अभाव रहा, जनसंख्या विस्फोट, निरक्षरता, बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी, काले धन, मुद्रा स्फीति भी प्रोग्राम की असफलता के कारण रहे हैं। निर्धनता विरोधी प्रोग्रामों की सफलता इन तत्वों पर निर्भर करती है। विकेंद्रीकृत नियोजन न केवल योजना क्रियान्वयन में अपितु योजना निर्माण में भी सत्ता का अधिक प्रयोजन जिला एवं उपमंडलीय स्तर पर बिचौलियों एवं भ्रष्ट तरीकों को दूर करने हेतु सरल क्रियाविधि सहित उपयुक्त प्रशासकीय तंत्र का विकास, उच्च एवं निम्न दोनों स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों में दक्षता, ईमानदारी एवं समर्पण का सर्वोच्च स्तर, प्रोग्राम से संबंधित विभिन्न एजेंसियों, सरकारी एवं गैर सरकारी के मध्य दोहरेपन एवं छितरे हुए दायित्व को दूर करने हेतु उचित समन्वय एवं सहयोग, IRDP को सरकारी सेक्टर के साथ जोड़ना, स्वयंसेवी संगठनों एवं समाज सेवकों की भूमिका को सशक्त बनाना, प्रतिभूमि जो भारत में भू संसाधनों का एक तिहाई है को हरियाली बनाना, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भूमिहीनों एवं हस्तशिल्पियों के लिए प्रोग्राम आरंभ करना, कृषि उद्योगों एवं सहायक उद्योगों की स्थापना, न्यूनतम आवश्यकताओं यथा पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की पूर्ति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के विशेष प्रोग्राम, काले धन एवं भ्रष्टाचार पर प्रहार, मुद्रा स्फीति नियंत्रण प्रोग्राम। अंत में यह भी आवश्यक है कि समाज के कमजोर वर्गों, जनजातियों, नगरीय क्षेत्रों में निर्धनों, भूमिहीन श्रमिकों, सीमांत कृषकों आदि को जागृत किया जाए एवं उनके संगठनों को गरीबी उन्मूलन प्रोग्रामों से संबद्ध किया जाए। निर्धनता उन्मूलन विशालकाय कार्य है, परंतु उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन एवं राजनीतिक दृढ़ेच्छा से इसे यदि पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता तो पर्याप्त सीमा तक निकट भविष्य में कम अवश्य किया जा सकता है।